आज है 18 दिसंबर दिन सोमवार। सभी श्रोताओं को अहमदाबाद से राजेश जोशी का नमस्कार। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी छठी बार सरकार बनाने को तैयार, पर इस बार आसान नहीं रही है जीत।
सबका साथ सबका विकास यही मंत्र लेकर के चले हैं और ये विजय जो है इसी बात को जनता की मोहर लग गई।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, पर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमिल हुए धूमिल।
निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हार गए।
पाटीदार अनामत आंदोलन और हिंदुत्व के क्या मायने हैं, सुनिएगा विशेष रिपोर्टें और आज हम आपके साथ होंगे पूरे एक घंटे तक। शुरुआत हमेशा की तरह विश्व समाचारों से।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। गुजरात में सीटों के स्तर पर भाजपा की बढ़त पिछले चुनाव के मुकाबले हालांकि कम जरूर हुई है। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में भाजपा ने 99 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को 77 सीटों पर बढ़त है। वहीं 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हर 5 साल में सरकार बदलने का सिलसिला बरकरार रहा है। वहां सत्ता अब कांग्रेस के हाथ से फिसलकर भाजपा के पास चली गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति साझा करेंगे, जिसकी परिकल्पना महाशक्तियों के मुकाबले के लिहाज से की जाएगी। दस्तावेज के मसौदे के हवाले से लिखा गया है कि महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता लौट आई है। ऐसे आसार हैं कि ट्रंप चीन की आर्थिक ताकत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना में राष्ट्रहित के 4 क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा और ये होंगे मातृभूमि की रक्षा, अमरीकी खुशहाली, ताकत के जरिए शांति स्थापित करना और अमरीकी प्रभुत्व को बढ़ाना। ट्रंप के भाषण से पहले चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, हम अमरीकी पक्ष के साथ बातचीत करके एक मजबूत, स्थिर और स्वस्थ व्यापारिक और आर्थिक रिश्तेदारी बनाना चाहते हैं। हम मानते हैं कि यह चीन, अमरीका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है। ये थे चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग के शब्द। ऑस्ट्रिया के नए सत्ताधारी गठबंधन में दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी को शामिल किए जाने के खिलाफ राजधानी वियना में प्रदर्शन हुआ। कई प्रदर्शनकारी पोस्टर थामे हुए थे जिन पर लिखा था, नाजियों को बाहर करो। पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी दी कि एक मौके पर प्रदर्शनकारियों राष्ट्रपति भवन के पास के बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की। गठबंधन की अगुवाई पीपुल्स पार्टी कर रही है, जिसके 7 मंत्री हैं, जबकि फ्रीडम पार्टी के पास 6 मंत्रालय हैं। इनमें गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय शामिल हैं। 1500 पुलिसकर्मियों से घिरे प्रदर्शनकारियों ने नाजियों बाहर जाओ के नारे लगाए। वियना में प्रदर्शनकारियों की आवाज सुन रहे थे आप, यह है बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी एएनसी पार्टी के नए नेता के लिए चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। सिरिल रामाफोसा और कोसाजाना दलामिनी जुमा के बीच मुकाबला है। सिरिल रामाफोसा को व्यापारियों का पक्षकार माना जाता है और दलामिनी जुमा अर्थव्यवस्था को बदलना चाहती हैं। दलामिनी जुमा का एक समय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा से विवाह हुआ था। एएनसी पार्टी दक्षिण अफ्रीका की सत्ता पर 23 साल से काबिज है। अफगानिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी काबुल की एक इमारत में दाखिल 3 चरमपंथियों की सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मौत हो गई है। यह इमारत खुफिया विभाग के ट्रेनिंग केंद्र के पास है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक घंटों तक चले संघर्ष के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। चरमपंथी पुलिस की वर्दी में दाखिल हुए थे। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। स्पेन की सरकार ने भरोसा जताया है कि कैटालोनिया में गुरुवार को होने वाले स्थानीय चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होंगे। प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने कहा है कि स्पेन का दुनिया में सबसे सुरक्षित चुनावी तंत्रों में से एक है और सबको इस संबंध में निश्चिंत रहना चाहिए। उनके डेप्यूटी साइंस डी सांता मारिया ने सीनेट समिति को बताया कि ये चुनाव उसी स्थानीय विभाग की ओर से ही करवाए जा रहे हैं जिन्होंने कैटालोनिया में पिछले चुनाव करवाए थे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने साफ किया है कि गठबंधन समझौते से कम कुछ भी क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और उनकी सहयोगी बेवेरियन पार्टी को संतुष्ट नहीं करेगा। बीबीसी समाचार।
Let's see.
ढोल बजाते, नारे लगाते और सड़कों पर नाचते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आखिर उनकी पार्टी सीधे छठी बार गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकास की जीत बताया।
सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र लेकर के चले हैं। और ये विजय जो है, ये विजय इसी बात को जनता की मोहर लग गई है।
हिमाचल में भी बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है, पर उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए हैं। ये बीबीसी हिंदी सेवा है। नमस्कार, गुजरात के अहमदाबाद शहर से मैं राजेश जोशी आपका स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों पर आज दिन भर कार्यक्रम होगा, पूरे एक घंटे का। इस कार्यक्रम को आप शॉर्टवेव 9540 किलोहर्ट्ज, 5875 किलोहर्ट्ज और 11945 किलोहर्ट्ज पर और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे तक सुन सकेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में चुनावी राजनीति के पेचीदा पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्रा। सबसे पहले गुजरात। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की 182 में से 99 सीटें जीत गई है। कांग्रेस ने काफी बड़ी बढ़त हासिल की और 80 सीटों पर उसका कब्जा हुआ है और यह आसानी से मिली जीत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। इस बार कई चीजें बीजेपी के खिलाफ जा रही थीं। जीएसटी से त्रस्त व्यापारी, नोटबंदी से परेशान छोटा दुकानदार और आम आदमी, आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा पाटीदार समाज और सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कसर कांग्रेस ने भी नहीं छोड़ी, पर वो फिर भी बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाई। सबसे पहले मोहनलाल शर्मा की रिपोर्ट।
ये बात तो तय है कि कल की रात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भारी जरूर रही होगी। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये रही होगी कि उसकी सत्ता में वापसी और 150 के आंकड़े का लक्ष्य उसे हासिल होगा या नहीं। कांग्रेस ये सोच रही होगी कि शायद सारे एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए वो सत्ता पर काबिज हो जाए। 182 सीटों वाली विधानसभा के लिए सुबह जब वोटिंग मशीनों ने परिणाम बताने शुरू किए तो कांग्रेसियों के चेहरे थोड़े खिलने लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की इस लड़ाई में वो भी टक्कर देती नजर आ रही थी। लेकिन दोपहर आते आते साफ हो गया कि राज्य में अगली सरकार गठन के लिए बीजेपी ने 92 का आंकड़ा पार कर लिया है। चाहे दिल्ली हो या फिर गुजरात, बीजेपी दफ्तर में हर जगह कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट पश्चिम सीट से 55,671 वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल मेहसाणा सीट से 24,022 वोटों से चुनाव जीत गए। बीजेपी की जीत पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का नकारात्मक प्रचार उसे ले डूबा।
पूरे गुजरात को जिस तरह से जातिवादी की आग में झोंकने का प्रयास किया गया, एक भ्रांति फैलाकर मुद्दों से भटकाकर जो प्रयास हुआ था, उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता हारे हैं। चाहे वो शक्ति सिंह जी हो, चाहे वो तुषार चौधरी हो, चाहे सिद्धार्थ पटेल हो, चाहे वो अर्जुन भाई मोडवाड़िया हो, सारे प्रमुख नेता चुनाव में हारे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व ने जो आउटसोर्सिंग से चुनाव लड़ने का एक प्रयास किया था, इसका नतीजा है।
कांग्रेस ने ये चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा था। उनके सामने चुनौती राज्य में पिछले 22 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी को हटाना था। इसके लिए उन्होंने जमकर प्रचार भी किया। कांग्रेस को इसी बात का संतोष है कि उसने 80 का आंकड़ा पार किया और टक्कर देती नजर भी आई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा,
98 और 99 और दूसरी तरफ 84, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी और भाजपा को 99 के फेर में तो उलझा लिया है। और वो दिन दूर नहीं जब सामंती सोच वाले अहंकारी लोगों को आज एक आईना सच्चाई का दिखाया गया है, जब दूसरा आईना भी दिखाया जाएगा। छाती बड़ी तो क्या, अब दिल भी बड़ा कीजिए।
पर राहुल गांधी ने हार स्वीकार करते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती है और दोनों राज्यों में सरकार को बधाई देती है। इन चुनावों में तीन युवा नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी उभरे थे। अल्पेश कांग्रेस के टिकट पर राधनपुर से विधानसभा पहुंच गए। कांग्रेस और आप के समर्थन से चुनाव जीते जगनेश मेवाड़ी ने वड़गाम सीट से जीत हासिल की और ट्वीट किया, नफरत फैलाने नहीं मोहब्बत लुटाने आया हूं। लेकिन हार्दिक पटेल ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत का सेहरा ईवीएम पर बांध दिया। उन्होंने कहा,
भाजपा 100 सीट 98 सीट और कांग्रेस 80 सीट 82 या 85, कोई ईवीएम पर शंका ना कर सके ऐसा माहौल बनाया गया है। टेम्परिंग करके चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले 5 साल हमारे जैसे आंदोलनकारियों के खिलाफ आपको हम पर अत्याचार तो करने पड़ेंगे, हम जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी वही खुमारी के साथ।
गुजरात चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय था। गुजरात चुनाव की जंग में लगातार छठी बार बीजेपी ने बाजी तो मार ली, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
ये थी मोहनलाल शर्मा की रिपोर्ट। उधर हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें हासिल हुई हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस को 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, लेकिन प्रेम कुमार धूमल, जिन्हें बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, वो चुनाव हार गए हैं। पूरी जानकारी दे रही हैं प्रियंका दुबे।
ये है नजारा शिमला के भाजपा कार्यालय का। हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर जीत की ओर अग्रसर कर दिया है। प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 25 जीत कर 19 पर बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी अब इस पहाड़ी राज्य में सरकार बनाने को तैयार है। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और भाजपा के ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रेम कुमार धूमल के बीच होने वाले एक निजी युद्ध के तौर पर प्रचारित किए गए इस चुनाव में रिकॉर्ड 74% मतदाताओं ने वोट डाले। गौरतलब है कि 1993 से हिमाचल की जनता हर 5 साल बाद सत्ता बदलती रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ सिर्फ 26 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 36 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में सरकार बनाई थी। पर इस बार राज्य में भाजपा के राजनीतिक चेहरे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रेम कुमार धूमल के सुजानपुर से हारने की वजह से पार्टी को झटका लगा है। साथ ही राज्य के पार्टी प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती को भी ऊना में हार का सामना करना पड़ा है। एक और जहां वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर जनमत को स्वीकारा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को ग्रामीण शिमला से जीत की बधाई भी दी। कांग्रेस की तरफ से हार का सामना करने वाले प्रमुख नाम वर्तमान कैबिनेट मंत्री सुधीर मिश्रा, ठाकुर सिंह और प्रकाश चौधरी के रहे। उधर भाजपा ने धूमल के हारने के बाद मुख्यमंत्री पद के नए दावेदार की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी शिमला के भाजपा कार्यालय में आज दिन भर उत्सव और उल्लास का माहौल रहा। 9 नवंबर को हुए मतदान में 68 में से कुल 48 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है। गौरतलब है कि इस चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में भाजपा के स्टार प्रचारक रहे थे। उन्होंने वीरभद्र सिंह की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें राज्य में खनन, जंगल, टेंडर, ट्रांसफर और ड्रग्स जैसे 5 माफियाओं को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
ये रिपोर्ट सुना रही थी प्रियंका दुबे। कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद शांता कुमार से संपर्क किया और पूछा कि आपकी पार्टी जीत तो गई है, पर दो दिग्गज प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती चुनाव क्यों हारे?
नहीं, हिमाचल प्रदेश में पार्टी को तो बहुमत मिला है सरकार बनाने के लिए, और निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हार गए और मुख्यमंत्री के लिए जिनको तय किया था वे हार गए। तो कोई विशेष कारण नहीं होता, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। भारतवर्ष में कौन सा बड़े से बड़ा नेता है जो कभी चुनाव नहीं हारा? तो हार और जीत होती रहती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बात थी कि हम लोग ओवर एस्टिमेट में बहुत अधिक थे, और ओवर एस्टिमेट जो पार्टी को था उस कारण भी ये थोड़ी कमी रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुल मिलाकर बहुत अच्छा हुआ कि सरकार बनाने के लिए बहुमत हमको मिला और एक अच्छे विपक्ष के रूप में भी जनता ने कांग्रेस को शक्ति दी है, कांग्रेस को समर्थन दिया है।
सर ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी लोग सवाल इस तरीके से भी उठा रहे हैं कि क्या कोई अंदरूनी भितरघात हुआ धूमल जी के साथ, क्योंकि उन्हें उनकी पारंपरिक सीट से नहीं लड़वाया गया और सुजानपुर से लड़वाया गया।
नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनका अपना ही वो सारा क्षेत्र है, जो सीट लड़ी उन्होंने उनके अपना जो क्षेत्र गाँव का इलाका है वो शायद उसी सीट के साथ है, तो दोनों सीटें उनके अपने इलाके के साथ, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, ये उनकी सहमति से ही सारा कुछ तय हुआ था।
अब चूंकि धूमल साहब हार गए हैं और प्रदेश भाजपा इकाई के प्रमुख हार गए हैं, तो अब मुख्यमंत्री पद के लिए तो आपके पास कोई चेहरा नहीं बचा?
नहीं, मुख्यमंत्री पद के लिए हमारे पास और भी कई नेता हैं और इसका निर्णय हाईकमांड को करना है और हाईकमांड को बहुत जल्दी निर्णय कर लेगी, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी।
वो जो थ्योरी बार बार पहले कही जा रही थी कि जेपी नड्डा साहब को कमान सौंपी जा सकती है, ऐसा लग रहा है आपको?
ये तो निर्णय हाईकमांड ने करना है, ये भी हो सकता है क्योंकि पहले उन्हीं का नाम था, पहले उन्हीं का नाम चर्चा में चल रहा था और भाजपा और हिमाचल प्रदेश में ये भी एक विचार था कि थोड़ा परिवर्तन बदल चेहरे में जरूर होना चाहिए, तो उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन आखिरी दिनों में चुनाव से कुछ पहले हाईकमान ने निर्णय कर लिया और उस वक्त सबको लगा कि वो जो निर्णय हाईकमान ने किया वो भी पार्टी के हित में है, तो अब नई परिस्थिति पैदा हुई है, इस नई परिस्थिति में हाईकमान कोई और नाम तय करेगा और जो भी तय करेगा वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वीकार होगा, पार्टी को स्वीकार होगा।
सर चूंकि आपका तो इतना लंबा अनुभव है हिमाचल प्रदेश की राजनीति का, आप तो जमीन से उठे नेताओं को, हिमाचल प्रदेश के नेताओं को भाजपा में देख ही रहे हैं, चार पांच नाम संभावित बता सकते हैं?
बात ये ऐसे बहुत से नाम है, कोई भी हो सकता है, नाम तो बताना मैं नहीं ठीक समझता। हाईकमांड के सामने सभी नाम हैं और हाईकमांड उनमें से बहुत जल्दी को तय कर देगा।
ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार। आइए चर्चा में शामिल करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्रा को, जो पिछले तीन दशकों से गुजरात की राजनीति पर रखे हुए हैं। मैं तो पहले आपसे क्षमा मांगता हूं मिश्रा साहब, इतनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं अब तक आ नहीं पाया क्योंकि आप देख ही रहे हैं माहौल चारों तरफ खबरें खबरें हैं। शुरुआती टिप्पणी आप दीजिए कि जितनी उम्मीद कांग्रेस कर रही थी उतनी वहां तक पहुंच नहीं पाई, और जितना दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी 150 सीट, वहां तक वो भी नहीं पहुंच पाई। गुजरात की राजनीति कुछ बदल रही है क्या?
हाँ, जो अगर देखा जाए तो थोड़े बदलाव आ रहे हैं, कांग्रेस उभर रही है लेकिन उस हद तक नहीं पहुंची जिस हद तक उन लोगों ने अनुमान लगाया था। भारतीय जनता पार्टी 150 की बात कर रही थी, वो 99 पे सिमट गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बदलाव आ रहा है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा और कांग्रेस थोड़ा सा ऊंचाई पर तो आई है।
कांग्रेस थोड़ी ऊंचाई पर आई है। इस कार्यक्रम में आप पूरे एक घंटे तक हमारे साथ शामिल हैं, आपसे और भी मैं टिप्पणी लूंगा क्योंकि गुजरात को आप जितने बेहतर तरीके से जानते हैं, यहाँ की आपने राजनीति कवर की है, हमारे श्रोताओं को उससे और हमको भी काफी फायदा होगा। गुजरात में बीजेपी सत्ता में लौट तो आई है पर उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही है। आइए विनीत खरे हमारे सहयोगी से सुनते हैं कि जैसे जैसे मतपेटियां या कहें कि ईवीएम का डेटा निकला, वैसे वैसे लोगों ने कैसे कैसे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।
हम इस वक्त हैं अहमदाबाद में, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है जोहापुरा, वहाँ पर इस वक्त सुबह के 10:30 बजे हैं और हम इस वक्त एक पान की दुकान के पास है जहाँ पर लोग बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। इनिशियल ट्रेंड्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाजपा को जो उम्मीद थी जिस तरह की बढ़त की वो नहीं मिल पाई है उसे। तो अल्ताफ भाई, ये जो अभी तक ट्रेंड्स आ रहे हैं, सबसे पहले बताइए क्या रिएक्शन है यहाँ पे?
ऐसा लगता था कि एक ही पक्ष में भाजपा भी जीतेगी, लेकिन अभी थोड़ा परिवर्तन आया उसके हिसाब से, मतलब लोग घर से निकले गए, वोट दिया करा, तो उसका काफी असर दिखाई दे रहा है अभी।
खैर, हम बहुत सारे लोग यहाँ पान खा रहे हैं और पान मुंह में है इसके कारण बोल भी नहीं पा रहे हैं।
हमारे मुद्दे ऐसे होंगे कि हमारे जोहापुरा विस्तार के अंदर कुछ पानी की अच्छी सुविधा हो जाए, हमारे कई इलाके ऐसे होंगे जैसे कि एकता नगर मुस्कान गार्डन के, वहाँ के जब पानी नहीं आता गर्मी के अंदर तो वहाँ की औरतें पानी के लिए बहुत दूर तक के जाती है, तो वहाँ भी नल में वेजलपुर का पानी आवे, ये जो नर्मदा योजना है वहाँ का पानी आवे, कुछ यहाँ और बड़े हॉस्पिटल खुलने चाहिए। हम गवर्नमेंट की कोई हमारी नाराजगी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आवे हमारे को अच्छा ही है, लेकिन हमारे विस्तार में जरा रोड बन जावे, अच्छी प्राथमिक सुविधा आ जाए।
मुसलमानों की इस चुनाव में कोई बात नहीं की, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने,
कोई भी नहीं। हमारे को तो कोई भी गवर्नमेंट बने अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो यहाँ की समस्या है उसको सुलझाओ।
जुहापुरा के बाद हम पहुंच गए हैं नवरंगपुरा। यहाँ पर हमारे साथ हैं अच्युत याग्निक जी, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल साइंटिस्ट। दोपहर के 12 बजने को हैं अब, और ऐसा लग रहा है कि भाजपा जीत की तरफ अग्रसर है लेकिन रिड्यूस मेजोरिटी।
डिसकंटेंट जो है वो कई एरिया में है, गुजरात में तो यूथ में तो है ही है, उनका मार्जिन कम हो जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि ये जो यंगर जनरेशन है वो हैप्पी नहीं है। उनको लगता है कि जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए थी इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई।
हम इस वक्त अहमदाबाद के शेलज इलाके में हैं, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही हार्दिक पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है।
पॉलिटिकली सूरत, राजकोट और अहमदाबाद के कुछ इलाकों में 12 से 15 सीटों पर जो 200 से लेकर 800 और 1000 तक जो हार जीत का जो अंतर रहा है, वहाँ पर ईवीएम टेम्परिंग का बड़ा मुद्दा है।
यहाँ पर बाहर दफ्तर के बाहर समर्थक जो है वो पटाखे फोड़ रहे हैं, क्या कारण क्या है?
हमारी जीत हुई है बीजेपी की, 210 वोट दे थी बीजेपी।
अच्छा, बीजेपी की कम सीटें,
कम सीटें है इसलिए
उन्होंने ईवीएम में पूरा घोटाला किया। वो 150 प्लस बोल रहे थे, उनको उससे नीचे ला के हमें दिखा दिया है।
तो पटेल समुदाय ने जो वोट दिए होते तो 150 प्लस भाजपा आती।
अहमदाबाद में कुछ आम मतदाताओं से बात कर रहे थे हमारे साथी विनीत खरे। गुजरात में नतीजों की शुरुआत बीजेपी के लिहाज से थोड़ी ढीली थी, फिर कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर बराबर आए और अंत में बीजेपी ने बढ़त हासिल की। गांधीनगर बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे बीबीसी गुजराती के हमारे साथी रॉक्सी गागडेकर छारा।
नमस्कार, फिलहाल मैं गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी की जो हेड ऑफिस है वहां पर कमलम में हूं। यहां पर जो वातावरण है अभी यहां पर बहुत ही चार्ज हुआ है, लोग यहां पे पटाखे फोड़ रहे हैं, मोदी मोदी की जो आवाज़ें हैं वो गूंज रही है हर जगह, अलग अलग तरह के स्लोगन्स यहां पर बोले जा रहे हैं और कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग प्रांत से, गुजरात के अलग अलग प्रांत से यहां पर कार्यकर्ता आए हैं। आज हमारे साथ अभी कुछ कार्यकर्ता जो गांधीनगर विस्तार से आए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है?
प्रवीण पटेल।
प्रवीण जी, आज भाजपा ने गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या कहना है आपको?
भाजपा की जीत ऐसे होने वाली थी और विकास के लिए जो इधर गुजरात की प्रजा ने वोट दिया है तो विकास का जीत हुआ है। तो
आपका नाम क्या है?
मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। इस गुजरात के अंदर जातिवाद की पराजय हुई है और विकास की बहुत बड़ी जीत हुई है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे विकास की जो उन्होंने नींव रखी थी और उसे सुचारू रूप आगे इसको बरकरार चालू रखा जाए।
आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं?
मेरा नाम गिरीश भाई प्रजापति, मैं अडालज से आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब जी ने जो संगठन के और छोटा जो कार्यकर्ता उसको के ध्यान में लिए और जो विकास किया है और जो कोई प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट किया है, और उन्होंने एक बड़ा कदम क्या लिया, ये कदम लिया था कि जो एजुकेशन की बात थी तो एजुकेशन में कोई मेडिकल में पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में पढ़ता है, तो उन्होंने क्या किया 50% का ऐसा दिया है, कोई मेडिकल में पढ़ता है तो 5 लाख रुपये की 2.5 लाख रुपये उनको मिला है, 50% मिला है। उनको 5 साल है, 4.5 वर्ष की बात करें 10 लाख से ज़्यादा एक आदमी को, एक स्टूडेंट को पैसा मिला है, वही बात है।
ये बीबीसी गुजराती के रॉक्सी गागडेकर छारा ने कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बात की, और जहां वहां ढोल ताशे बज रहे थे और बम फोड़े जा रहे थे, अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा था। मैंने मुलाकात की पार्टी प्रवक्ता मनीष दोषी से। यहां गुजरात में अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मैं हूं और मेरे साथ कांग्रेस के नेतागण और कार्यकर्तागण हैं। कांग्रेस के लिए जो नतीजे आए हैं वो सब आपको मालूम है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोषी मेरे साथ हैं। मनीष भाई, आपसे यानी आपकी पार्टी से कुछ लोगों ने उम्मीद बंधाई थी, कम से कम आपके समर्थकों को तो उम्मीद थी, उस उम्मीद पर आप खरे नहीं उतरे।
हमारी जो अपेक्षाएं थी इसके मुताबिक ये नतीजा नहीं है,
लोगों की भी, जनता की भी भावना थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने, कहीं ना कहीं हमारी भी क्या क्या कमियां रही है वो देखेंगे। पर जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी बात करने, झूठी झूठी बात करने वाले भाजपा की, जिस तरीके से हालत हुई 150+ के बोलने से इसमें, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा वो सत्ताधारी पक्ष रहा है इसके पास से जिस तरीके से हुआ। पर फिर भी मैं इतना बहुत प्रमाणिकता से स्वीकार करता हूँ कि लोगों की जो भावनाएं थी इस बार कांग्रेस की सरकार बने, वहां कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोई कमियां रही होगी, इसका निश्चित तौर पे मंथन किया जाएगा। और आने वाले दिनों में लोगों ने हमारे पे इतना बड़ा भरोसा किया है तो निश्चित तौर पे लोगों के लिए हम लड़ेंगे, लोगों के हक और अधिकार के लिए कांग्रेस की लड़ाई चालू रहेगी।
मनीष भाई, जब कोई पार्टी हारती है तो वो हमेशा ये कहा जाता है कि आप आत्ममंथन करेंगे, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या आपका नेतृत्व नहीं है?
नहीं,
नेतृत्व मतलब केंद्रीय नेतृत्व
नहीं, इसमें निश्चित तौर पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय राहुल जी ने पूरे गुजरात में एक माहौल बनाया, लोगों को मार्गदर्शित किया।
ये उन्होंने माहौल बनाया नहीं, या माफ नहीं, नहीं, या, नहीं या तीन नौजवान जो थे,
नहीं,
जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, इन लोगों ने माहौल बनाया।
लगता है कि हमने पहले से ही खुले मन से प्लेटफॉर्म दिया था कि गुजरात में जो नौजवान गुजरात के हित की लड़ाई लड़ रहे, युवाओं के लिए रोजगार की लड़ाई लड़ रहे, शिक्षा का अधिकार की लड़ रहे, वो सभी का कांग्रेस पक्ष स्वागत करती है।
ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोषी और बीजेपी के प्रवक्ता भरत पांड्या से हमारे साथी वात्सल्य राय ने बात की और पूछा कि आपकी उम्मीद से कम नतीजे क्यों रहे।
देखो, जिस तरह से कांग्रेस ने नेगेटिव कैंपेन किया था, जिस तरह से जातिवाद फैलाने का जो प्रयास किया था, जिस तरह से गुजरात में अशांति फैलाने का प्रयास किया था, उसी एटमोस्फियर में से ये विजय निकला है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव, गुजरात की जनता हमारे पॉजिटिव मुद्दे के साथ रही है, विकास के साथ रही है, और ऐसे एटमॉस्फेयर में इस तरह से विक्टरी मानना। दूसरा ये भी है कि कांग्रेस को 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, हिमाचल में वो हार गए और हम 22 साल से हैं फिर भी हम जीतते हैं। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेक है कि 27 साल बीजेपी रूल करेगा, 22+5, तो ये विक्रमजनक तो है ही।
तो ये क्या आपके लिए सेटिस्फाइंग है? ये रिकॉर्ड तो नेचुरली पहले से माना जा रहा था और बहुत सारे जो ओपिनियन पोल आ रहे थे, जो सर्वेस थे, क्योंकि 2014 में भी आपने सारी सीटें गुजरात में लोकसभा की जीती थी, तो कहीं मतलब आप ये स्थिति नहीं देखते कि वहां से आपका स्लाइड डाउन हुआ है और कांग्रेस तो एक तरीके से आप आउट रेस से मान ही रहे थे पहले से?
देखो, जिस तरह से एटमोस्फियर था जो बनाया था, तो सब लोग मानते थे कि बीजेपी हारेगी, ऐसा सब लोग मानते थे और काफी प्रचार भी इस प्रकार से हुआ था और पूरी अराजकता फैलाने का प्रयास किया था कांग्रेस ने और सब लोगों ने। मैं समझता हूँ उसके बाद इसी एटमॉस्फेयर में से बाहर निकलना और विजय प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।
जी पांडे जी, मैं बस एक आखिरी सवाल, मतलब क्योंकि अब रिजल्ट तो आ गए हैं, सरकार आपकी बनने जा रही है, लेकिन क्या ये एक आत्म अवलोकन का या अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं उसका वक्त नहीं है?
हर इलेक्शन के बाद उसका एनालिसिस होता है, हम एनालिसिस करेंगे, जहां भी कुछ हमको करना है वो करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन कांग्रेस को इस बार भी 22 साल के बाद भी बीजेपी को हरा नहीं पाई और राहुल गांधी अध्यक्ष बने और उनके सामने ये दो हार हुई, मतलब एक तो हिमाचल में अपनी सत्ता को उन्होंने खो दिया और बीजेपी गुजरात में थी उसको हरा नहीं सके। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के हर प्रमोशन के बाद हार मिलती है या हार के बाद प्रमोशन मिलता है, ये हुआ है।
ये थे भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के प्रवक्ता भरत पांड्या। बीबीसी हिंदी रेडियो पर आज ये कार्यक्रम एक घंटे का है। इस कार्यक्रम को आप शॉर्ट वेव 9540 किलोहर्ट्ज, 5875 किलोहर्ट्ज और 11945 किलोहर्ट्ज पर और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे तक सुन सकेंगे और फेसबुक पर भी यह कार्यक्रम पूरा एक घंटे चलेगा। शॉर्ट वेव पर जो श्रोता हमें 9510 फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे थे वहां अब यह कार्यक्रम नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वहां यह कार्यक्रम जारी रहेगा। आर के मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, अगले भाग में, अगले आधे घंटे में हम उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। यह भी चर्चा करेंगे कि गुजरात का असर दिल्ली पर कितना पड़ेगा। फेसबुक पे हमारे साथ बने रहिए, रेडियो पर आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इससे पहले कि मैं आर के मिश्रा के पास जाऊं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और गुजरात, हिमाचल इन तभी सभी विषयों पर बहुत सारे हमारे रिपोर्टर आपके लिए रिपोर्ट लाने को तैयार हैं। इंतजार कीजिए। स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी रेडियो पर। मैं हूं राजेश जोशी। एक घंटे का यह विशेष कार्यक्रम सीधे अहमदाबाद से प्रसारित किया जा रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस बुरी तरह हार गई है, लेकिन विजयी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल अपनी सीट नहीं बचा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अपने राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने तगड़ी टक्कर दी है। बीजेपी 99 सीटें जीत चुकी है और कांग्रेस 80 पर है। बीबीसी हिंदी रेडियो पर अगले आधे घंटे में आप सुनेंगे गुजरात में फैले हमारे संवाददाताओं की ताजा रिपोर्टें, राजनीतिक मुद्दों पर विश्लेषण भी होगा और हमारे एक्सपर्ट आज के आरके मिश्रा जी, उनसे भी हम बात करेंगे और ये भी सुनेंगे कि स्टूडियो हमारा यानी बीबीसी स्टूडियो कैसे बना अखाड़ा। लेकिन पहले एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। गुजरात में सीटों के स्तर पर हालांकि भाजपा की बढ़त पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति साझा करेंगे, जिसकी परिकल्पना महाशक्तियों के मुकाबले के लिहाज से की जाएगी। ऑस्ट्रिया के नए सत्ताधारी गठबंधन में दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी को शामिल किए जाने के खिलाफ राजधानी वियना में प्रदर्शन किए गए। दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी एएनसी पार्टी के नए नेता के लिए चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। सिरिल रामाफोसा और कोसाजाना दलामिनी जुमा के बीच मुकाबला है। अफगानिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी काबुल की एक इमारत में दाखिल तीनों चरमपंथियों की सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मौत हो गई है। यह इमारत खुफिया विभाग के ट्रेनिंग केंद्र के पास है। स्पेन की सरकार ने भरोसा जताया है कि कैतालोनिया में गुरुवार को होने वाले स्थानीय चुनाव निष्पक्ष होंगे। प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने कहा है कि स्पेन का दुनिया में सबसे सुरक्षित चुनावी तंत्रों में से एक है और सबको इस संबंध में निश्चिंत रहना चाहिए। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने साफ किया है कि गठबंधन समझौते से कम कुछ भी क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और उनकी सहयोगी बेवेरियन पार्टी के लिए संतोषजनक नहीं होगा। नए साल में वे सोशल डेमोक्रेट्स या एसपीडी से इस सिलसिले में बात करेंगी। बर्लिन में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वह अस्थायी समझौते पर संतुष्ट नहीं होंगी। बीबीसी समाचार।
कुलदीप मिश्रा सुना रहे थे बीबीसी समाचार। बीबीसी हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। वापस अहमदाबाद में मैं राजेश जोशी आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि गुजरात पर चर्चा करें, आइए सीधे चलते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जहां से वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार हमारे संपर्क में हैं। हेमंत जी, आपसे भी माफी मांगता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। पहाड़ की ठंडक ये तो बीजेपी को तो काफी ऊंचे पहुंचा दिया, लेकिन कांग्रेस को तो ठंडक में सिकुड़ गई है कांग्रेस।
जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की काफी दुर्गति हुई है, ये मैं एक शब्द एक लाइन में अगर कहूं तो काफी हालत खराब हुई है। और खुद कांग्रेस को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बुरी हालत होगी पार्टी की, तो 21 के आसपास तक, 20-21 के आसपास अभी दिख रही है सारी। जी
हेलो जी, कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया?
देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, हिमाचल प्रदेश की सुबह भी यहाँ बीबीसी से मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं कहूं कि एक वो 6-7 लगातार इलेक्शन ऐसे हुए विधानसभा के, एक परंपरा, एक रिवाज, एक रिवायत हो गई हिमाचल प्रदेश में कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो परंपरा के हिसाब से इस बारी बीजेपी की बारी थी, तो बीजेपी सत्ता में आ गई है। तो मैं कहूं कि
जब बहुत जी
मैं कहूं जब भी
कुछ और कहने को है आपके पास कही है
जी।
नहीं, आपने अपनी बात रख ली है, मुझे लगता है कि जो एक तस्वीर आपने बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। हम लौटते हैं वापस गुजरात विधानसभा चुनावों की तरफ और हमारे संवाददाता हिमांशु भायना राजकोट में है इस समय, जहां से मुख्यमंत्री रूपाणी चुनाव जीत चुके हैं। हिमांशु, वहां पर भी ढोल ताशे बज रहे हैं, कोई पटाखे वटाखे छोड़े जा रहे हैं या क्या माहौल है?
बिल्कुल, ढोल उताशे बज रहे थे जब ये अनाउंस हुआ। विजय रूपाणी का पूरा फैमिली वहां पे काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ा था, उनके बेटे और उनकी बेटी और उनके जो बहनोई थे वो फ्रीक्वेंटली लगातार उनकी फैमिली को ये बता रहे थे कि किस तरीके से मिस्टर विजय रूपाणी लीड कर रहे हैं। नोट करने लायक बात है कि
इंद्रनील राज्यगुरु जो इसके प्रत्याशी थे, इसके सामने कांग्रेस से लड़ रहे थे, जिनका दावा था कि वो विजय रूपाणी को हराना चाहते हैं, वो काउंटिंग सेंटर पे कहीं दिखाई नहीं दिए। दो लुताशे का माहौल था, बट वो माहौल अभी तब्दील हो चुका है थोड़ा एक तरीके के शौक में, क्योंकि भिखुभाई दलसानिया जो है भाजपा के साथ जुड़े हुए, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो इसकी वजह से विजय रूपाणी जी राजकोट पहले एक रैली करने वाले थे, पर अब सीधा उस जो मृत्यु हो गई है वहां पे वो जा रहे हैं। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि वो जो मौत का एक मलाजा रखना पड़ता है उसकी वजह से शायद वो कुछ ढोलुता से ज्यादा बजे या कोई रैली बड़ी हो राजकोट में फिलहाल तो। बट तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों पे किसान परा चौक में हो रही है राजकोट के, वहां से पूरी रैली निकालने की बात, एक विजय यात्रा निकालने की बात है, अब वो शायद कल निकले आज निकले,
वो कल ही निकलेगी मुझे लगता है
जी।
अभी तो रात को सब थक गए होंगे। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम और दूसरे भी संवाददाता हैं। मुझे लगता है कि राजकोट में हमारे संवाददाता सलमान रावी हैं, मुझे नहीं मालूम कि हमारे संपर्क में हैं या नहीं हैं, लेकिन सलमान क्या मेरी आवाज आप सुन रहे हैं?
जी मैं सूरत में हूँ।
अच्छा माफ कीजिए राजकोट के, ये गलती मुझसे हुई, राजकोट में हिमांशु थे आप सूरत में।
नहीं तो मैं आपको कह दूं कि वो एक्चुअली जो अमित शाह जी ने कहा था 150 सीटें, तो यहाँ मजाक चल रहा है सूरत में, काजी साहब 150 सीटें तो आई लेकिन वो एक्चुअली जीएसटी काट लिया तो 99 और 100 के आसपास पहुंच गई है, तो ये मजाक चल रहा है अभी सूरत में।
हाँ वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा एक झटका इस तरह से कहा जाता है कि वो 150 सीटों की उम्मीद कर रहे थे और 150 सीटें नहीं मिली। अब क्या वहां कोई जुलूस निकल रहा है, क्या माहौल, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, क्योंकि वही वो जगह है जहां पर व्यापारी बहुत नाराज थे जीएसटी से, नोटबंदी से।
जी जी बिल्कुल, और यहाँ पर स्वीप कर दिया है बीजेपी ने, 16 में से 15 सीटें बीजेपी के पास आई हैं, और सिर्फ मांडवी की एक जो सीट है आनंद चौधरी की, वो पहले भी इस सीट को जीतते रहे हैं, तो सिर्फ वो एक सीट, और पिछली बार भी बीजेपी की 15 सीटें थी 16 में से इस इलाके में पिछले विधानसभा के चुनाव में, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि रोष जो अपना जताया था लोगों ने, आपको शायद याद भी होगा कि जिस वक्त आंदोलन चल रहा था यहाँ व्यापारियों का, तो कुछ नेताओं ने आके उसमें शिरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर यहाँ के व्यवसायियों ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल वैसा ही हमारा है जैसे बाप और बेटे के बीच की बातचीत है, हम बीच में किसी को नहीं चाहते हैं। लेकिन एक चीज तो है कि
संपर्क मुझे लगता है सलमान साहब आपसे थोड़ा सा शायद कुछ टेलीफोन लाइन में गड़बड़ी है या मैं नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन दिव्या आर्य हमारे संपर्क में है जो अहमदाबाद में ही है, टेलीफोन लाइन पे है, हमारे स्टूडियो में इस वक्त नहीं है। दिव्या आपने क्या देखा दिन में, थोड़ा संक्षेप में बताइए।
राजेश जी सबसे बड़ी हाईलाइट अगर मैं बताऊं वो ये है कि गुजरात में खासतौर पे अहमदाबाद में लोग अपना जो असली फीलिंग है वो उसको बयान कर रहे हैं। पूरे कैंपेन के दौरान लोगों ने ऐसा कहा था कि बीजेपी के खिलाफ वॉइसेस उभरती नहीं है, बच्चे माफ कीजिए लोग क्रिटिसाइज करने से बहुत डरते हैं। आज हमने 3 इलाकों में फेसबुक लाइव किए, दिन भर हम घूम रहे थे और लोगों ने बहुत खुल के अपनी डिसएग्रीमेंट, अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के विकास से बिल्कुल खुश नहीं है, पर उन्हें लगता है कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बहुत जरूरी है ताकि जो वादे पूरे नहीं हुए वो आने वाले समय में पूरे हों, बल्कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी बढ़त है जो कि 2019 में उनकी मदद भी कर सकती है।
जी दिव्या आर्य बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बीबीसी हिंदी रेडियो पर 1 घंटे का यह विशेष कार्यक्रम जारी है, आइए अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो इस पूरे चुनाव को दिशा देते रहे। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है, पिछले 22 साल से बीजेपी सत्ता में है और 2002 के दंगों के बाद पूरे राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ज्यादा तीखा हो गया था। हिंदुत्व की राजनीति का असर कुछ ऐसा है कि इस बार कांग्रेस के आलोचकों ने कहा कि राहुल गांधी भी खुद को हिंदू दिखाने की होड़ में थे। संदीप सोनी की विशेष रिपोर्ट।
बोलो जय भवानी, जय सरदार।
सरदार वल्लभ भाई पटेल न होत तो आज सोमनाथ नु भव्य मंदिर बन्यू होत। अने जारे
भगवान शिव के अनन्य भक्त श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं।
राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर जाकर मंदिरों के चुनावी दौरे चल रहे हैं और दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि केस पर सुनवाई को टालने के लिए कपिल सिब्बल का उपयोग किया जा रहा है।
भारतीय राजनीति में ऐसा कोई भी चुनाव अब शायद नहीं होता जिसमें किसी न किसी बहाने हिंदू और हिंदुत्व की बात ना हो। कई जानकार मानते हैं कि हिंदुत्व वो तुरुप का इक्का है जो सब पर भारी पड़ता है। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय।
राहुल गांधी से उम्मीद थी कि वो एक सेकुलर राजनीति करेंगे, उन्होंने मंदिर मंदिर जा करके बताने की कोशिश की कि हम मोदी से बड़े हिंदू हैं। जो गुजरात का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की नकल में कांग्रेस उतर गई।
वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन भी मानती हैं कि ये हिंदुत्व का ही असर था कि गुजरात में कांग्रेस इस बार मुसलमानों के उतने नजदीक नजर नहीं आई जितना वो अक्सर नजर आया करती थी।
राहुल गांधी ने जरूर मंदिरों का दौरा किया, लेकिन वो कोई मस्जिद या मजार कहीं गए नहीं। जो मीटिंग्स होती थी इस्लामिक क्लर्जी के संग, इस बार कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल अवॉइड किए। कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता थे वो भी अपने आप को बिल्कुल बैकग्राउंड में रखा इस बार।
राधिका रामासेशन कहती हैं कि बीजेपी का यही विश्वास कांग्रेस की चिंता का विषय है।
राजीव गांधी जी ने थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया था, उस अबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और हिंदूस को पूजा अर्चना करने का अनुमति दिया था, और उसी समय वो शाबानु रूलिंग भी आया सुप्रीम कोर्ट में और वह उसको पार्लियामेंट ने ओवरटर्न किया। क्या हुआ उस 89 में, कांग्रेस को ना हिंदू का वोट मिला ना मुसलमान का वोट मिला।
हिंदुत्ववादी पत्रिका ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के समूह संपादक जगदीश उपासने मानते हैं कि गुजरात के चुनाव में बीजेपी को सीधे सीधे हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी,
क्योंकि गुजरात की राजनीति में हिंदुत्व एसेंशियल सेक्टर बन गया है। भाजपा ने प्रत्यक्ष राजनीति नहीं की, लेकिन राम मंदिर का जब मुद्दा उठा तो निश्चित रूप से वो बात के चरणों में, और चूंकि भाजपा ने उसका जवाब दिया, उस पर अनेक नेताओं ने टिप्पणियां की, लेकिन हिंदुत्व की आप उसको ये कह सकते हैं कि चूंकि गुजरात में पहली बार लंबी सरकार भाजपा की चली, तो ये मुद्दा हर चुनाव में रहता है और इस चुनाव में भी रहा।
जानकार इस बात पर सहमत नजर आते हैं कि हिंदुत्व एक मुद्दे की शक्ल में इतना बड़ा हो चुका है कि गुजरात चुनाव के बाद अगले लोकसभा चुनाव में इसकी अहम भूमिका होगी, क्योंकि संसदीय चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय।
अयोध्या में मंदिर बनाने का विषय सुप्रीम कोर्ट में आया है, वह एक तरह से कहा जाए तो संकेत है 2019 के चुनाव का, और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुना देता है कि अयोध्या में जो 2.77 एकड़ जमीन है उसका स्वामित्व हिंदुओं का है, तो फिर 2019 का जो चुनाव है इस मुद्दे के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा।
जगदीश उपासने भी इससे इनकार नहीं करते, लेकिन वो इसके साथ एक शर्त भी जोड़ देते हैं।
हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुख रूप तभी ले सकता है 2019 के चुनाव में जब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें कोई जजमेंट की स्थिति आ जाए, अन्यथा नहीं चलेगा। जो मैं समझता हूं कि 2019 में भी डेवलपमेंट विकास एक बड़ा मुद्दा होगा।
राधिका रामासेशन का मानना है कि कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति करना तो चाहती है, लेकिन चाहकर भी उस तरह नहीं कर पा रही जिस तरह बीजेपी करती है।
खुल के तो बैटिंग कर नहीं पाएगी कांग्रेस, बिल्कुल इसी ढंग से करेगी जैसे राहुल। अब सोनिया जी पिछले कर्नाटका चुनाव में वो लिंगायत मठ है वहां जाके उन्होंने पूजा अर्चना वगैरह किया, उनके स्वामी से मिली थी, तो इस टाइप के जरूर करेंगे जो जेस्चर्स कांग्रेस, लेकिन वो कांग्रेस बीजेपी खुलेआम हिंदू कार्ड खेल सकती है। कांग्रेस मुझे नहीं लगता है कि खुलेआम खेल पाएगी। कांग्रेस की जो कोर आइडियोलॉजी है वो सेक्युलरिज्म, उसका अहम भाग है।
गुजरात चुनाव के नतीजे साफ इशारा कर रहे हैं, दो साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या गुजरात का फॉर्मूला दोहराया जाएगा, ये कहना शायद जल्दबाजी हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात के नतीजे हिंदुत्व के मुद्दे की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका अदा करेंगे।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए,
आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, जय श्री राम की। ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैं आपको शामिल करता हूं आरके मिश्रा साहब। हिंदुत्व क्या भारतीय राजनीति का स्थायी भाव बन चुका है? अब इससे कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या अलहदा नहीं हो सकती है?
देखिए, खास तौर से अगर गुजरात के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत ही अहम भाग बन गया है, क्योंकि धीरे 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 छोटे छोटे तरीके से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के आने साथ विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, वो सब इस चीज को उन्होंने बुन दिया है, ताना बाना में बुन दिया है। जैसे कि यहाँ पर लोग बाग अंबाजी के मंदिर की तरफ चल के जाते हैं, तो ऐसे क्यों होने लगा? मैं जब दिल्ली से आया,
सवाल एक भी है, सॉरी माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूँ, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषित ध्येय हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी है, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तो कमजोरी ये कही जाएगी जो उससे सहमत नहीं है, उन्होंने पूरा पूरा एक मैदान भारतीय जनता पार्टी को दे दिया या उसको रोक नहीं पाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, जनमानस तक तो पहुंची है ना भारतीय जनता पार्टी अपने जो ध्येय था उसको लेकर के?
बिल्कुल पहुंची है, और इसको एक बाकायदा एक प्लान्ड तरीके से एक योजना पूर्वक उस चीज को किया है, और उसके जितने उनके सारे संघ परिवार के बाकी ऑर्गन्स थे सब इस काम में लगे हैं, तब ये अचीव हुआ।
तो क्या कांग्रेस की भी अब मजबूरी हो गई है? ये सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी को जब जनेऊधारी हिंदू कहना पड़ा तो ये तो कांग्रेस भी उसी रास्ते पा रही है,
क्योंकि
और ये आरएसएस के लिए वीएचपी के लिए तो खुशी की बात।
हाँ, खुशी की बात, क्योंकि इस चीज पे वो लेकर के आए हैं, उन्होंने स्थिति का निर्माण कर दिया है कि आज कोई भी यहाँ आएगा तो उसको ये पेश करना पड़ेगा।
यहाँ स्थिति आ गई है। अब एक और मुद्दा है जो है पाटीदार आंदोलन का, यानी पटेल समुदाय का आंदोलन, जिसने भारतीय जनता पार्टी के सभी समीकरण पलट के रख दिए। आपसे इस विषय पर अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, उसे पहले सुनते हैं।
हमारे इस आंदोलन के द्वारा पूरे गुजरात में एक संगठन शक्ति का उल्लास हुआ है, जहां पर इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से हम टूटे हुए थे।
हार्दिक पटेल की उम्र को देख भला किसे अंदाजा रहा होगा कि 23 साल के इस युवक के नेतृत्व में हजारों की भीड़ सड़क पर निकल जाएगी। हार्दिक ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का गठन जुलाई 2015 में किया था। इस संगठन ने पाटीदारों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग की। नरेंद्र मोदी का दिल्ली आना और हार्दिक पटेल का गुजरात में उभरना, दोनों में क्या संबंध हो सकता है? 2001 से 2014 में 24 मई तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। गुजरात के किसान नेता सागर भाई रबारी को लगता है कि मोदी प्रदेश में होते तो हार्दिक का आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता।
हार्दिक पटेल के बारे में पहली बार ऐसा हुआ, दो वजह, एक तो मोदी साहब यहाँ से निकल चुके थे, अपनी मंजिल पर पहुँच चुके थे, दूसरा यहाँ जो रूल करने वाले थे वो नॉन पाटीदार, मतलब ज्यादातर नॉन पाटीदार कंट्रोल करने वाले थे, चेहरे भले ही पाटीदार हो। हार्दिक पटेल में वो सब कुछ था जो बीजेपी को और हिंदुत्व फोर्सेस को उन्हीं की भाषा में वो जवाब देने लगा।
हार्दिक पटेल का उदय गुजरात की राजनीति में कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदारों ने बीजेपी की 22 सालों की सत्ता की जड़ों को हिला दिया। आंदोलन की लपटें इतनी तेज थीं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को हटाना पड़ा। हालांकि इससे पटेलों का गुस्सा कम नहीं हुआ। क्या हार्दिक पटेल के कारण बीजेपी से पटेलों का मोह भंग हुआ है? गुजरात में खेड़ा जिले के लसुंधरा गाँव में आयुर्वेद के एक डॉक्टर जगदीश पटेल मानते हैं कि हाँ, मोह भंग हुआ है।
पटेल पर अत्याचार तो किया है उन्होंने, 14 पाटीदारों पे गवर्नमेंट ने अत्याचार तो किया है ना। अब अगर आपकी जाति के होते तो आपको भी लगता हम भी पाटीदार है।
हार्दिक पटेल अपनी रैलियों में मोदी और बीजेपी पर तीखे हमले बोलते रहे, लेकिन बीजेपी हार्दिक पटेल पर सीधे हमले बोलने से बचती रही। दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले हार्दिक पटेल की सीडी भी जारी की गई। इस सीडी में हार्दिक पटेल को एक कमरे में महिला के साथ दिखाया गया। हार्दिक ने इसे बीजेपी का कथित दुष्प्रचार का हिस्सा करार दिया। पाटीदार यानी पटेलों में दो उपजातियां हैं, कड़वा और लेउआ। कहा जा रहा है कि गुजरात का जो संपन्न तबका है उसे हार्दिक पटेल के आरक्षण की मांग से बहुत जुड़ाव नहीं है। पटेल की उम्र 25 साल से कम है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके कहने पर कांग्रेस पार्टी ने कई उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस और हार्दिक पटेल का साथ कितना लंबा चलेगा? हार्दिक पटेल दिवंगत शिवसेना नेता बाल ठाकरे को अपना आदर्श नेता मानते हैं। क्या कांग्रेस हार्दिक के आदर्श के साथ खुद को सहज पा रही है? प्रदेश कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाड़िया ने इस सवाल के जवाब में काफी सावधानी बरती।
देखो, हमें पहली बात तो यह है कि हार्दिक कांग्रेस में नहीं है, सही है, मैं यही मानता हूँ, कांग्रेस भी वही मानती है, और हमारा साधन और साध्य पवित्र ही है। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हम वायर कानून हाथ में लेंगे, ये वो करेंगे वो करेंगे।
कॉमर्स में 50% से भी कम अंकों से ग्रेजुएट हार्दिक पटेल और उनके संगठन का हिंदुत्व को लेकर झुकाव जग जाहिर है। पाटीदार नेता नरेश वीरानी हिंदुत्व से करीबी होने को स्वीकार करने में हिचकते नहीं हैं।
हिंदू है इसीलिए हिंदुत्व से करीब तो रहेंगे ही, लेकिन वो आज के जमाने में जो भी इलेक्शन में वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाएगा तो वो आगे भी हमको परेशान करेगा। खरेखर इलेक्शन हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ना नहीं चाहिए।
हार्दिक पटेल पर आंदोलन के कारण राजद्रोह का मुकदमा भी चला, वो जेल भी गए, लेकिन राज्य की राजनीति में उनकी मौजूदगी कम नहीं हुई।
ये रिपोर्ट सुना रहे थे रजनीश कुमार। आइए अनामत आंदोलन पर चर्चा करते हैं। आरके मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा साहब, लाखों पटेल सड़कों पर उतरे, एक नौजवान 2015 से इतने पटेलों को उद्वेलित कर सका, आंदोलित कर सका, लेकिन वो जो वोट था वो लगता है कि वो पटेलों के परिवार में ही बट गया वोट। क्या
नहीं, इसमें दो चीजें हो गई। एक कि जो सीनियर लोग थे, जो पुरानी पीढ़ी थी और जो नई पीढ़ी थी, उसके बीच में एक अंतराल आ गया, और जो युवा वर्ग था वो काफी तादाद में बाहर निकला है वोट भाजपा के खिलाफ देने में इस मुद्दे को लेके। इसके पीछे आप परिपेक्ष को थोड़ा समझिए, सिर्फ ये पाटीदार का मामला नहीं है, पाटीदार एक इशू बन गया, लेकिन ये जो बेसिक सवाल है वो युवा वर्ग का है, जिनको मोदी जी के कार्यकाल में बड़े बड़े सपने दिखाए गए, प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे पढ़ाए गए, पढ़े, बड़ी फीस दी गई, सरकारी कॉलेजेस में जगह नहीं थी, और वो जब आए बाहर निकल के तो वो सब मिराज था, सब गायब हो गया था, 5,000-5,000 रुपए।
हाँ, लेकिन अब सवाल ये भी है कि सरकार तो वापस भारतीय जनता पार्टी की बन गई है या बनने वाली है। कांग्रेस ने उनसे वादा किया था पाटीदारों से कि उनको आरक्षण दिलाया जाएगा, उस वक्त विरोध किया था बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कहा था कि संवैधानिक तौर पर यह संभव नहीं है। तो अब पाटीदार लोग उनसे ये डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे कि हमें आरक्षण दीजिए?
हाँ, बिल्कुल करेंगे, लेकिन विपक्ष की राजनीति जो है, इसके लिए इन लोगों को वक्त और मिल गया है, इन युवा नेताओं को विपक्ष की राजनीति करने का, इनकी धुरी ही विपक्ष की राजनीति थी, इनको और वक्त मिल गया है। लोग किस तरीके से इन डिमांड्स को लेकर रिएक्ट करेंगे, मेरा मानना है कि हार्दिक ने ऑलरेडी उसको ब्रॉड कर दिया है, पिछले 6-8 महीने साल में उन्होंने उसको एजिटेशन के मोड को वाइडन कर दिया था, तो औरों और यूथ को अंदर खींच रहे थे। जो लोग प्रभावित हुए, काफी काफी मात्रा में युवा वर्ग प्रभावित हुआ है, ये टारगेट वही है।
एक वेकअप कॉल तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो ही गई है, जो 150 का दावा कर रहे थे और आके बहुत कम उस पे, यानी
देख लीजिए कि अगर आप ये देख रहे हैं कि 80 के करीब आया है, 5 इंडिपेंडेंट्स और छोटू वसावा की पार्टी के लिए, तो 85 के करीब तो आके खड़े हो गए, आप जी हैं, 99 पे नीचे आ गए।
बहुत बहुत धन्यवाद आरके मिश्रा जी। अब एक दूसरी चर्चा करते हैं, हिमाचल हो या गुजरात, राजनीति के अखाड़े में मोटे तौर पर जैसा कि हम जानते ही हैं, दो पहलवान लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। नतीजे आए तो हमने अपने स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव शाहनवाज हुसैन को बुलाया और कांग्रेस के शकील अहमद को भी। सुनिए अंजाम क्या हुआ, हमारा स्टूडियो ही पहलवानी के अखाड़े में बदल गया।
देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं तो टारगेट बना बड़ा बनाते हैं। मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूं, जहां टिकट तय होते हैं, उम्मीदवार के नाम तय होते, तो 182 सीट पर हम अच्छे उम्मीदवार देते हैं।
टारगेट की बात आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने ये कहा था 150 सीटें जीतेंगे, क्या ये भी एक चुनावी जुमला था?
ये चुनावी जुमला नहीं था, ये आत्मविश्वास था, ये हमारा कॉन्फिडेंस था कि हम जनता के बीच में हमने काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने पूरे गुजरात को जातिवादी ध्रुव में बांटने की कोशिश की कांग्रेस ने, और इसके वजह से बहुत सारे चक्रव्यूह रचे, लेकिन फिर भी गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर यकीन किया, अमित शाह जी के स्ट्रेटजी पर यकीन किया, हमारे लाखों कार्यकर्ता लगे।
जो आत्मविश्वास 150 सीटों का आपका था वो हिला है थोड़ा?
नहीं, ये सही है कि उम्मीद के मुताबिक उतनी सीटें नहीं आई,
लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह इनविंसिबल हैं, इनको हराया नहीं जा सकता।
हाँ, तो हराया नहीं, तो किसी ने, नहीं किसी ने हराया नहीं ना, हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है।
हमारे साथ कांग्रेस के शकील अहमद भी हैं। शकील साहब, ऐसे मुद्दे जैसे गुजरात की जनता ने दिए आपको, पाटीदार का पूरा अमानत आंदोलन आपके पास था, GST, नोटबंदी, 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसके बावजूद आप जहां खड़े हैं, आपको थोड़ा ये, अगर बहुत की सड़क का चलता हूं मुहावरा मैं इस्तेमाल करूं, अपने गरीबान में झांकना नहीं चाहिए क्या?
से जोशी जी, जब भी कोई चुनाव होता है, कोई पार्टी जीतती है या हारती है, जीतने में थोड़ी कम समीक्षा होती है, हारने में थोड़ी ज्यादा समीक्षा होती है। गुजरात में हमको जो अपेक्षा थी, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया। हम बिल्कुल विश्वस्त थे कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से, और चूंकि ये आक्रोश जिनकी चर्चा आपने की, निश्चित रूप से नोटबंदी पर आक्रोश था, GST पर आक्रोश था,
उस आक्रोश का इस्तेमाल, उसका फायदा विपक्षी पार्टी के तौर पर आप कहां कर पाए, कितना कर पाए, कौन जिम्मेदार है, केंद्रीय नेतृत्व इसका जिम्मेदार आप मानते हैं इसके लिए?
नहीं, बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व ने हमारी मेहनत की, और उसके वजह से ही आप देख रहे होंगे कि जो पार्टी दावा करती है, आपने खुद वो सवाल उठाया कि 150 सीटें हम जीतेंगे, ये दावा, वो 100 सीटों तक नहीं पहुंच सकी 182 की असेंबली में, माने उनके आकलन से 50 से ज्यादा सीटें कम हो गई। एक बात सही है कि जब इस हार की समीक्षा होगी, एक तो समीक्षा होगी हमारे देश के इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा, और जिस तरह राहुल गांधी जी का इंटरव्यू उन्होंने बंद किया, नोटिस
कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया गया है, नोटिस भारतीय जनता पार्टी को,
नोटिस नोटिस
चुनाव आयोग के गलत इस्तेमाल का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने नोटिस दिया राहुल जी को, और चुनाव खत्म होने के बाद इंटरव्यू ब्लॉक कर दिया, और चुनाव खत्म होने के बाद वो नोटिस वापस ले रहे हैं,
इसलिए तो राहुल गांधी जी 18 से पहले ही अध्यक्ष बन गए। उनको ये कॉन्फिडेंस होता है, चुनाव आयोग को, जिस तरह के शब्दों का, जब अहमद पटेल साहब जीते तब तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा था, जब पंजाब के अंदर भी कांग्रेस जीती तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा था, और यहाँ पर जिस तरह के शब्दों का, भाषा का, चुनाव
मैं जीतने हारने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि क्यों हुआ ऐसा,
चुनाव आयोग
कि राहुल गांधी जी को नोटिस दिया गया और चुनाव खत्म होने के बाद वापस ले लिया गया, चुनाव आयोग ने नोटिस वापस ले लिया, प्रधानमंत्री को पोलिंग के दिन, पोलिंग के
नोटिस दिया था, दोनों का नोटिस वापस,
रोड शो करने का मौका दिया,
मैं कह सकता हूँ देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना संवैधानिक संस्था है, आपको कोई इतराज है तो जाके कहिए, लेकिन आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कठपुतली है,
इसके पहले
चुनाव आयोग ने आपको पूरा मौका दिया, चुनाव आयोग के अंदर जाकर कांग्रेस को कॉन्फिडेंस नहीं था, जानते थे कि ये जीतेंगे नहीं, राहुल गांधी के ऊपर न जाए तो चुनाव आयोग पर थोप दिया जाए, इसलिए शकील साहब
तरीके से
कह रहे हैं, शकील साहब टैक्टफुल तरीके से कह रहे हैं चुनाव आयोग पर भी समीक्षा करेंगे। अरे राहुल गांधी जी पर समीक्षा किए ना, उनके अध्यक्ष बनते दो, एक हिमाचल कांग्रेस मुक्त हो गया और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई।
शानवा साहब से एक स्पेसिफिक सवाल है, गुजरात में जिस तरह के चुनाव के नतीजे आए, आपको इसकी इससे ज्यादा की उम्मीद थी, क्या अब ये माना जाए, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, कि हिंदुत्व की करेंसी, हिंदुत्व का सिक्का खोटा पड़ गया है?
देखिए, गुजरात के अंदर हमारी अपेक्षा थी कि हमारी फिर से सरकार बने, और वहाँ की जनता ने फिर से 5 साल के लिए हमारी सरकार बना दी है।
जिस तरह
और
के नतीजे आए हैं, क्या हिंदुत्व का सिक्का खोटा पड़ा, ये सवाल है?
एकदम कोई सिक्का खोटा नहीं पड़ा, हम राष्ट्रवाद के पथ पर चलते हैं, आप उसको हिंदुत्व कहते हैं, हम राष्ट्रवाद के पथ पर चलते हैं।
आपकी पार्टी ने कहा है, आपके प्रधानमंत्री, आपके पार्टी के अध्यक्ष सब हिंदुत्व की बात करते हैं, आप रिजेक्ट कर रहे हैं हिंदुत्व को?
नहीं, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं हम उसको राष्ट्रवाद, यही राष्ट्रवाद है।
मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा है कि खोटा पड़ गया, 14.5% मुसलमानों से 80% इस देश के हिंदुओं को डरा के कितने दिन वोट लेंगे?
इन्होंने तो 14% मुसलमानों को मंच पर भी नहीं चढ़ने दिया,
एक बार, दो बार, तीन बार, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है चूल्हे पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ की 14%
मुसलमानों को दूर रखा,
80% हिंदू समाज को, इसलिए आपने सही कहा कि ये सिक्का खोटा।
देखिए, ये तो चुनाव में जनोधारी हो गए, मंदिर मंदिर घूमे, कोई अकलियत के मोहल्ले में नहीं गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मंदिर क्यों नहीं गए, ये भी देश को बताइए।
ये बिल्कुल ये बात के सवाल है,
फिलहाल मंदिर क्यों जाते हैं, सिर्फ चुनाव में मंदिर की याद,
दोनों कांग्रेस पार्टी के लोग हैं,
सिर्फ चुनाव में मंदिर की याद क्यों आती, भगवान चुनाव में क्यों याद आए,
क्यों लग रहा है,
इसलिए तो भगवान ने सरकार नहीं दी। आप
उससे कह दो वाइटर को कर दे,
अजीत के, अजीत कैन यू हियर मी,
ये बहस हो रही थी बीजेपी के शहनवाज हुसैन और कांग्रेस के शकील अहमद के बीच। इसी गर्मा गर्म बहस के साथ ही विधानसभा चुनाव पर केंद्रित बीबीसी हिंदी का ये विशेष कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आरके मिश्रा जी, आपने बहुत सब्र दिखाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर संदीप सोनी और दिल्ली में कुलदीप मिश्र का भी। अहमदाबाद में तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया और दिल्ली में स्टूडियो मैनेजर थे अजित सारथी। यहाँ अहमदाबाद से मैं राजेश जोशी अब आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। कल सुबह 6:30 बजे फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।